لوگ
हेलो,
मैंने उठा लिया है, तुम फोन रख दो।
जी अच्छा।
बोलो।
आपका मोबाइल बंद है मामू?
मतलब की बात करो।
वो बूढ़ों के आशियाने को ढूंढ लिया है।
ठीक है, वहां जल्दी पहुंचो। वहीं आशियाने पर नरगिस नाम की एक बूढ़ी औरत का पता करो।
नरगिस?
नरगिस बुजुर्ग मेहर।
नरगिस? बताओ क्या वही नरगिस?
हाँ, वही हमारे बच्चों की दाया। उसकी आखिरी खबर यह थी कि वो अपनी मौत के इंतजार में है। तुमको इत्मीनान करना होगा कि वो जिंदा है या मर गई। अगर मर गई है तो इत्मीनान करो। जानते हो कैसे? उसकी कब्र की तख्ती देखनी होगी, समझे?
हाँ मामू।
तुमने सुना मैंने क्या कहा?
सुन लिया है। आपको हुआ क्या, इस कदर परेशान क्यों है?
ये बता दूं कि अगर मैं पूरे रास्ते चुप रहा और कुछ नहीं बोला तो मैं अपनी पूरी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था, और एक मिनट के लिए मेरा भरोसा लौट आए और मैं ये भूल जाऊं कि तुम और तुम्हारे बाप का रोब और दबदबा क्या है, और तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, और मैं कौन हूं, मेरी हैसियत क्या है, और तुम्हारे भाई के अनुज के बकौल अपना माजी और पिछली जिंदगी के बारे में भूल जाऊं कि मैं एक नौकर और यतीम बच्चा हूं। ये यतीम बच्चा अपने भरोसे को जुटाकर यह बताने की कोशिश करना चाहता है कि मेरी आवाज न कांपे, हाथ पांव न कांपे, कहीं जवाब न दे जाए कि मैं तुमसे कह पाऊं कि मैं कि तुम मुझसे शादी करोगी।
ये जबी है, अहमद रजा का चचाजात भाई, तुम्हारा चचाजात भाई।
अहमद ने बताया नहीं था?
मैं बेसहारा हो गई, मैं बेकस हो गई।
बाबा।
अल्लाह सलवात भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
मेरा ध्यान कौन रखेगा बाबा, मुझे कौन सहारा देगा बाबा, बाबा बाबा खुदाया।
सलाम।
क्या हुआ?
कुछ नहीं।
ये खजस्ता है, भाई अहमद रजा की बीबी।
सलाम, तुम ठीक हो?
वो कौन था जिसे तुम बाहर बहस कर रहे थे?
वो, उसके साथ पार्किंग को लेकर मेरी बहस हो गई थी।
पार्किंग को लेकर? वह मेरा और अहमद रजा का चचाजाद भाई है, ये मत कहना कि नहीं जानते थे।
तुम्हारी ये हालत, ये परेशानी, क्या ऐसा कुछ है जिसका ताल्लुक अहमद रजा से है? तुमसे और अहमद रजा से? अहमद रजा और तुमसे?
मुझसे कुछ ताल्लुक नहीं मोहतरमा, मगर परेशानी ने मेरा गिरेबान पकड़ रखा है। जिस परेशानी ने मुझे घेर रखा है वो ये है कि मैं कर्जदार हूँ। जानते हो किस चीज का? उस 18 मिलियन का जिसको इधर उधर से कर्जा लेकर अहमद रजा को दिया ताकि एक घर का मालिक बनूं। मगर वो 18 मिलियन मेरे गले की फांस बन गया, जिसके वजह से मजबूर हूं कि हर गंदा और नाजायज काम करूं, और अब ये खिलाफ कानून और गंदा काम करने पर मजबूर हूं ताकि वो चीज जो देखी थी उस पर खामोश रहूं और अपना मुंह बंद रखूं। मुझसे सिर्फ देखने का ताल्लुक है मोहतरमा, मैंने अपना मुंह बंद रखा और पुलिस को कुछ नहीं बताया। मैं डर के मारे पुलिस को कुछ नहीं बताया कि कहीं पूछ ना बैठे मैं कहां था और क्या कर रहा था। मैंने वहां देखा कि नरीमन और उसका भाई टर्मिनल में चाय की दुकान के तहखाने में एक लाश को घसीट रहे थे। अभी अभी सभी यही बता रहा था कि वो अहमद रजा की लाश थी। इन सब का ताल्लुक उस टर्मिनल की चाय की दुकान और उस तहखाने से है, यही वजह है कि सभी वहां गया था।
ये मुझ पर क्या मुसीबत टूट गई, ये तुमने क्या कर डाला?
अगर तुम्हारी भावा जो चाय की दुकान पर गई तो नरीमन अच्छा आदमी नहीं है, खजिस्ता के लिए खतरा है, मेरी हालत भी ठीक ठाक नहीं है, तुम पुलिस को खबर करो।
ज्यादातर ऐसा ही होता है कि कुछ चीजें एक साथ ही आती हैं, बुढ़ापा अकेलापन ज्यादातर एक साथ ही आते हैं। इन्होंने तुम्हारी बहन को अपनी गिरफ्त में ले रखा है।
अब क्या हो सकता है?
अगर मैं कोदाल चलाने वाला होता तो अपनी फुलवारी में कोदाल चलाता। अकेलेपन की कोई दवा नहीं, मगर ये कि खुदा हो, अगर अपनी जिंदगी में उसको जगह दी हो, अगर जिंदगी में जगह ना दी हो तो कुछ चीजों से अपनी जिंदगी को बहलाना होगा। ये लो दिल बहलाने का नुस्खा, 4 टेबलेट, जो न तो मारेगी और ना ही फायदा करेगी, सिर्फ इंसान को सरगर्म रखेगी।
कवामी ये बताओ, क्या ये मेरे भी काम आ सकती है?
तुम्हारी बीवी की मौत के बाद?
उसके गम में हूँ।
गम खाने की चीज है, ज्यादा खुशी इंसान को लापरवाह बना देती है, थोड़ा गम बुरा नहीं। खुदा हाफिज।
ये कवामी क्या कह रहा था?
तुम्हारी हालत के बारे में बता रहा था। तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा। अभी भी सिगरेट पीती हो?
सिगरेट की बात छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुम्हारी हालत खराब है ना?
मेरी हालत को क्या हुआ है?
वही तुम्हारी जमीन का मामला, वो कर्जदार लोग, वो धोखेबाज, नाहिद की मौत।
हाँ, मेरे हालात खराब हैं। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं सर नहीं उठा सकता। दिवालिया हो गया हूं। एक दिवालिया इंसान कर क्या सकता है? क्या करूं क्या ना करूं कि उधेड़बुन में लगा हूं।
क्या करूं क्या ना करूं की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तुम्हारी जमीन बड़ी कीमती है, बेचो और मुसीबत से छुटकारा पाओ। पैसा देकर उनको भगाओ, यह काम जरूर करो।
वो जमीन वक्फ की है। वो जमीन एक ऐसा कैंसर है जो मेरे यहां अटकी है, यहां अटकी है। मेरी सारी परेशानी की जड़ वो जमीन है।
वो जमीन या वो धोखेबाज,
ये सब कुछ एक ही है। अगर तुम जान सको कि मद्दे मुकाबिल कौन है या किससे लड़ना है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मालूम ही नहीं कि सामने वाला कौन है, उस वक्त। आजकल यूसुफ की बीवी मेहरी मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती है।
तो क्या
यही कि नहीं जानता कि किससे मुकाबला है, किसने ये खेल मेरे साथ शुरू किया है? किसी ने मेहरी की उन काली आंखों को मेरे कमरे की अलमारी के आईने पर चिपका दिया है, जो मुझे 30 साल पहले की तरफ ले जाती है।
30 साल हो या 300 साल, मेहरी एक ऐसा रास्ता थी जिस पर हमें चलना था और हम चले भी। यूसुफ की बीवी मेहरी एक गलत औरत थी हमारे बीच। यूसुफ की बीवी हमारे बीच एक अजनबी औरत थी। उसे खुद को दफा कर देना चाहिए था, चला जाना चाहिए था।
किसी भी कीमत पर?
हाँ, किसी भी कीमत पर। इस कीमत को तुम पहले भी नहीं समझे थे और अब भी नहीं समझे हो। तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसाई थी कि समझ सको, लेकिन नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारा बेटा वही गलती कर रहा है जो पहले उसके चचा ने की थी। यूसुफ की बहुत बड़ी गलती थी जो एक अजनबी औरत को हमारे बीच लेकर आ गया। मेहरी अब खत्म हो गई, मेरी सड़ गल गई, उसकी याद मिट गई, नाम मिट गया। हमने अपना खानदान बचाया, हमारे बाप की रूह को चैन मिल गया।
मेहरी की उन काली आंखों को मेरे कमरे में किसने चिपकाया? मेरे या तुम्हारे अलावा तीसरा कौन इस राज से बाखबर है?
कोई भी नहीं।
क्यों नहीं? तुमने नरगिस को भुला दिया, जो बच्चों की परवरिश करती थी, वही तीसरी है।
मैं इस तशवीश की कोई वजह नहीं पाती। मेहरी पागल हो गई थी, उसका दिमाग फिर गया था और वो 30 साल पहले पागल खाने में दम तोड़ चुकी है। ये बहुत ही फितरी बात है जो दुनिया में अंजाम पा सकती है। इसलिए मैं तुम्हारी परेशानी की वजह नहीं समझ पा रही हूँ। यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पूरे कमरे में उसकी पूरी तस्वीर क्यों ना लगा दें, ये तशवीश की बात नहीं होनी चाहिए।
क्या अनुष, कहाँ हो तुम? क्या खबर है?
सलाम अंकल समसामी।
हेलो,
सलाम बाबा, कैसे हो?
ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। अभी आप कहाँ हैं?
एयरपोर्ट पर सीमा को लेने आया हूँ। क्या बात है?
आपसे मिलना चाहता था।
दोपहर के खाने के बाद तुम्हारे घर की तरफ आऊंगा। घर पर ही हो ना?
जी जी। खुदा हाफिज।
मुख्तसर ये कि तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तुम ठीक हो? मैंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम्हारे शौहर क्यों आए तुम्हें लेने के लिए। तुम लोग बिल्कुल परेशान ना हो, समसामी पहुंचा देंगे।
हाँ, इन सब का पता तो एक दूसरे के करीबी है। रिसालत, पूनक, जवादिया, मुझे सब पता है। जब तुम लोग शिराज से वापस आई थी तो मैंने ही तो पहुँचाया था। आए आए, सामने गाड़ी है, आए आए।
कितने थक गए हम लोग। क्या हुआ?
पता नहीं, अभी तक तो ठीक थी। खाने चलेंगे दो चिड़ियों की मानिंद।
हेलो समसामी, अभी क्यानुष ने फोन किया था, मशहद से बोल रहा था। कह रहा था नरगिस मर चुकी है उन्हीं बूढ़ों के आशियाने में, 2 साल हो रहे हैं। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है?
मतलब तो ज्यादा है, यानी कि एक की मौत से एक आदमी खुश है।
यानी ये कि कावे को कभी ये पता नहीं चलेगा कि उसका बाप कौन है। मतलब ये कि तुम्हारी और फ्लोर की बात छिपाने की पॉलिसी को कामयाबी मिली है।
और भी मतलब बताऊं?
तुमसे अगर बन पड़ता है तो कहो। अभी जो मेरे कमरे की अलमारी पर 2 आंखें चिपकाई गई हैं, इनका क्या मतलब हुआ?
नहीं, मैं नहीं बता सकता। तुम कहां हो?
फ्लोर के घर पर हूं, अभी नाहिद के कब्र पर जा रहा हूं।
अच्छी बात है। ठीक है, चलो। खाओ सीमा खानम, खाओ। भाई हम तो परहेज करते रहे हैं। जब तुम नहीं थी तब उबला हुआ आलू दिन में, उबला हुआ आलू रात में।
तुमने कहा और मैंने भी मान लिया।
मेरी कसम
दोस्त, दावत मैंने दी थी तुम्हें,
पैसे मैं दे देता, जरूरत नहीं थी। उनको वापस कर दिया होता, बाकी तुम अपने पास रखो, तुम्हारा इनाम। देखो मेरे दोस्त, जब मैं बोल रहा हूँ पैसे मैं दूंगा, मैं हिसाब चुकाऊंगा। पार्टी मैं देने वाला था, मैं ही दूंगा। बस सबके सामने मैंने बोला था दावत मैं ही दूंगा। बस अब कुछ मत बोलो।
कुर्बान जाऊं दोस्त, इसमें हमेशा की क्या बात है?
इसने तो कहा था कि ये मशहद में है।
Thank you. सलाम। ये मेरी शान के खिलाफ है कि कोई मेरा पीछा करे, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है कि तुम किसी का पीछा करो। तुमने मुझे एक तजवीज़ पेश की, ऐसी तजवीज़ जिसके बारे में कहा कि खुद पर भरोसा करके पेश किया। अभी उस तजवीज़ को 2 घंटे ही गुजरे हैं। तो फिर मुझे भी इस बात की इजाज़त दो कि मैं भी अपनी सोच के सहारे जवाब दूं कि तुम्हारी तजवीज़ को मानूं या ना मानूं। अगर नहीं तो उसकी वजह क्या होनी चाहिए, और अगर मान लूं तो किन वजूहात की बिना पर कबूल करूं, और उसूली तौर पर मौजूदा हालात में शादी करना मुनासिब होगा या नहीं, मेरे लिए कुछ ऐसा वजूद में आएगा या नहीं।
ये परेशानियां मुझ पर छोड़ दो रोया खानम, अभी ज़रूरी है कि हम इस सिलसिले में और बातें करें। अपनी दलीलें पेश करूं और बता सकूं कि तुम्हारा इंतखाब क्यों किया, कि तुम ये ना सोच बैठना कि तुम्हारे डैड की दौलत और पोजीशन की खातिर रोया खानम मेरा मकसद।
तुम्हारा मकसद कुछ गलत नहीं है, मुझे शक नहीं है। तुम मेरे डैड की दौलत पर नज़र नहीं रखते, क्योंकि उनके पास कोई दौलत है ही नहीं, वो सब कुछ गंवा बैठे हैं। लिहाजा तुम इन सब चक्कर में नहीं हो, ये मैं जानती हूँ, इसलिए तुम अभी यहाँ से जाओ, शीशा ऊपर चढ़ाओ और चले जाओ।
सलाम बेटी।
सलाम।
कुछ इस तक कहाँ है बेटी?
मालूम नहीं, शायद कंबर खानम को मालूम हो कि
नहीं। कंबर खानम भी नहीं है कि उनसे पूछूं।
इसके गियर बॉक्स में कोई परेशानी नहीं है?
नहीं है, ठीक है, मैंने सोचा कि होगी।
ये क्या है? अजब सर दर्द है।
ये सब कब तक जारी रहेगा?
क्या बेटी,
क्या कयामत तक मेरा पीछा करती रहेंगी?
मैं तुम्हारे पीछे रहूंगी ताकि अपनी कयामत को बर्बाद ना कर दो।
और वो खुजिस्ता, वो भी आपकी साथी है?
मेरी साथी नहीं है, तुम्हारी दोस्त है, ऐसी दोस्त जो तुम्हारे काम आ सकती है।
ए बाबा, वो खुद अपने काम नहीं आ सकती, उसका शौहर 7-8 अरब लेकर भाग गया है, अब ये उसको ढूंढ रही है कि वो कहाँ है। वो बेवकूफ है, अगर मैंने इस तरह का पैसा उड़ाया होता तो किसी भी आशिक और बच्चे के चक्कर में नहीं पड़ती। आप क्या करते? आहा, अगर मैं कयामत में आग में जलना चाहूं तो किसको पकड़ूं?
शैतान को, आग को। अगर खुदा के बंदों को नुकसान पहुंचाना चाहती हो तो पुलिस और थाने का सामना करना पड़ेगा।
मुझे धमका रही हैं?
जब मैं बच्ची थी हमेशा लोग कहा करते थे चोर, तो खुद से सवाल किया करती थी ये चोर कैसा होता है। मेरे एक मामू थे, मैं उनको बहुत चाहती थी, उनसे खूब खेला करती, उनके कांधों पर सवार हो जाया करती, इस तरह उस तरह अदाएं दिखाती, नकल करती, हम लोग खूब हंसते थे। एक दिन मैं उनसे पूछ बैठी, मामू ये चोर कैसे होते हैं, उनके सींग होती है, दुम होती है, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। जैसे ही उनसे पूछा, देखा अचानक उनकी भौहें तन गई और पेशानी पर ऐसा बल पड़ा कि पूछो मत। एक दिन सुबह का वक्त था, जब मैं सोकर उठी तो अचानक देखा मेरे सामने बिल्कुल कयामत का मंजर था। गाड़ियां और पुलिस ही पुलिस थी, वो घर में घुस आए, देखा कि मामू का हाथ बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। मेरे मामू को ले गए क्योंकि उन्होंने चोरी की थी, क्योंकि वो चोर थे। मेरे मामू के ना तो सींग थे ना दुम थी, दो आंखें थी दो कान थे, मेरी तरह, मेरी माँ की तरह, सब की तरह वो भी पानी पीते थे, खाना खाते थे। अब जबकि मेरी जिंदगी खत्म होने के करीब है, समझ में आ रहा है कि चोर कैसा होता है। एक इंसानी शक्ल में जो आग का अलाव जलाता है, वो इस बात को बिल्कुल भूल जाता है कि ये आग खुद उस आदमी के दोनों हाथों में है। एक ऐसे आदमी की शक्ल में जो गाफिल हो चुका होता है, आराम पसंदी को ज्यादा गले लगा लिया है। गाफिल होना कम बुरा नहीं होता है, आराम पसंदी कम बुरी नहीं होती है लड़की। तुझे खुदा, पीर, पैगंबर का वास्ता, तेरी बुराई कोई छोटी मोटी बुराई नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी बुराई है। ये लोगों का हक छीनना इंसान को लर्जा बरंदाम कर देता है। तुम ठीक ही कहती हो, कयामत तक तुम्हारा पीछा तो नहीं किया जा सकता या तुम पर निगाह तो नहीं रखी जा सकती। तुमको खुद सोचना चाहिए कि अपने हाथों को लकड़ी का कुंदा ना बनाओ। खुदा से दुआ करो कि जितनी जल्दी हो सके सुधर जाओ और तुम्हारे दिल में रोशनी जागे।
मैं क्या करूं, ये नूर मेरे लिए अपनी चमक दिखाए।
तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने अमल का जायजा लो।
मेरे कौन से अमल?
तुम्हारे सामने ही पहले तो तुम्हारे बेचारे वालिद हैं, जो अस्पताल में बिस्तर पर पड़े हैं, जिन्हें दिल का दौरा पड़ा है। उनके दिल की बीमारी तुम्हारे अमल का नतीजा नहीं है, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि एक बाप को अपनी औलाद का गम ना हो? मुझे पता है कि क्या करना चाहिए। पहला काम ये कि कोई शराफत बंदाना काम ढूंढो। अच्छा पुणे, ये बताओ कि तुम क्या काम जानती हो?
आपका क्या मतलब है, सिलाई कढ़ाई का काम?
देखो, वह काम जो सारा बैठकर ऐसे टक टक करती है और लिखती है, तुमको भी आता है?
टाइपिंग नहीं, मुझे नहीं आती।
तो फिर इसी को सीख सकती हो ना, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब ठीक कर दूंगी।
नहीं बाबा, आपकी कंपनी में।
अभी तुम मेरा मजाक उड़ाओ, एक वक्त आएगा जब बोलोगी कि कंबर खानम ने सिखा के क्या मेहरबानी की। पुणे, तुम्हें खुद चाहना होगा कि मैं तुम्हारी मदद करूं। समझ रही हो कि मैं क्या कह रही हूं?
हाँ हाँ, समझ रही हूं कि आप क्या कह रही हैं।
कौन है? हेलो, कौन है?
सलाम कंबर खानम, आपको खुजस्ता के बारे में मालूम है?
नरीमान भाग गया, असली आदमी भाग गया, पुलिस आने वाली है, भागो, दौड़ो, जल्दी दौड़ो, भागो, जाने मत देना उसको। मैं वही हूं जिसने तुमको फोन किया था। नारीमान भाग गया, अहमद रजा की बीवी उसके पीछे गई है।
आखिर बताओ तो सही क्या हुआ?
बाद में
आमुल बाबुल के लोग सवार हो, आमुल बाबुल के लोग आए, आमुल बाबुल, आमुल बाबुल।
मरोगी क्या
मोहतरमा? ये सवार होने का कौन सा तरीका है? नीचे उतरो।
रजा कहाँ है? वो लाश जिसको गोदाम के अंदर तुम खींच रहे थे मेरे शौहर की थी क्या? थी?
मैं कातिल नहीं हूं। मैं उसको पेपर पर दस्तखत करने के लिए राजी कर रहा था ताकि मुझको भी मेरा हिस्सा मिल जाए और सलीम को भी उसका हिस्सा मिल जाए और अहमद रजा को भी अपना हिस्सा मिल जाए। वो किसी तरह तैयार नहीं हो रहा था, अपनी जिद से बाज नहीं आ रहा था। मेरे हाथ में नहीं था, मैं गुस्से में था, उसको सीने के बल धक्का दिया। उसी चाय की दुकान में उसका सर मेज से जा टकराया, फिर उठ नहीं पाया, बेहोश पड़ा था। मैं डर गया कि कहीं मर ना जाए। मेरा भाई भी डर रहा था कि कहीं मर ना गया। हम लोग बुरी तरह से डर गए थे कि मर ना जाए, इसीलिए इमाम अस्पताल में भर्ती कर दिया ताकि लोग उसकी मदद कर सके, कहीं मर ना जाए। लेकिन जब बेहोश था तो उसका दिल धड़क रहा था, इसका मतलब वो उस वक्त जिंदा था, सांस चल रही थी, मतलब जिंदा था। उसी दिन के बाद था कि वो गायब हो गया। मैं समझ रहा था कि सारी उंगलियां मेरी तरफ ही उठेंगी और सारा गुनाह मेरी गर्दन पर डाल दिया जाएगा और लोग मुझे कसूरवार कहेंगे, इसीलिए मैं भाग गया और दोनों तरफ का नुकसान मुझे उठाना पड़ा। देखो मोहतरमा, मुझे नहीं मालूम है कि तुम्हारा शौहर जिंदा है कि मर गया। मैं नहीं जानता कि अभी वो कहां है। बस इतना जानता हूं कि मैंने उसको कत्ल नहीं किया है, मैंने उसको नहीं मारा है।
نشینت به هوای تو
از بیخبری شکم نکن تن رنجور از در به دری گریه نکن دل بی تاب از بیخبری شکم نکن تن رنجور از در به دری ای وای چه